नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। भारतीय चिकित्सा संघ ने कल देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों और हरियाणा में 1 चरण में वोटिंग होगी। राज्य के विभिन्न भागों में भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। सहरसा मानसी रेलखंड पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए रेलवे ने निगरानी बढ़ाई। और कृतज्ञ राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना का प्रदेश में भी भारी विरोध हो रहा है। विरोध के चलते प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। जूनियर डॉक्टरों और रेसिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल के कारण प्रदेश में कई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी और आपातकाल सेवाएं बाधित हैं। इसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन भी टालने पड़े हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि एम्स पटना में भी विरोध प्रदर्शन जारी है।
एम्स पटना के छात्रों, जूनियर डॉक्टरों तथा रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध मार्च निकाला और घटना को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के चलते एम्स पटना में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र और चिकित्सक सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो वे इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे। इधर पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में भी चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कल सुबह से 24 घंटे के लिए देशभर में चिकित्सा सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। आईएमए ने एक बयान में कहा कि सभी आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी, लेकिन नियमित ओपीडी चालू नहीं रहेगी और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के मामले में संबंधित संस्थान के प्रमुख की ओर से अधिकतम 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने इस संबंध में केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रमुख को पत्र लिखा है। ये निर्देश हाल ही में कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या की घटना और इस मुद्दे पर रेजिडेंट डॉक्टरों के विरोध के मद्देनजर आया है। डॉक्टरों के हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए मरीज इलाज के अभाव में लौट रहे हैं।
हाँ, इलाज बंद है, बच्चा के सुया जावे तो 2 गो पड़ गया है, तेरा बात बंद है और बच्चा के दिखाने वाला है तो डॉक्टर सामने बैठ रहा है। ये कोई गारंटी नहीं है जो कई दिन खुलेगा, 2 दिन आपसे तो चल गए।
वो बच्चा मरेगा भाई, सिया न मरेगा तही तो। हाँ, दूर दूर से आते हैं, चाहे भी लगे में है, इलाज न होगा तो बच्चे रखो किया।
चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद बनी 90 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। 18 सितंबर को पहले चरण, 25 सितंबर को दूसरे चरण और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और एसआरओ उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 की तीसरी उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस सफलता से यह साबित हो गया है कि भारत अत्यंत छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम है। इन दोनों उपग्रहों को 475 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया है और इनके सौर पैनल खोल दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 ने आज सुबह ठीक 9:17 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। इसरो केंद्र और दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी लोगों की ताइयों के बीच रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ गया। मिशन का उद्देश्य एवियोनिक सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण करना और भारतीय अंतरिक्ष उद्योग के भविष्य के उपक्रमों के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना है। ये उपग्रह निगरानी, आपदा निगरानी, आग का पता लगाने, ज्वालामुखी गतिविधियों, औद्योगिक और बिजली बिजली संयंत्र आपदाओं जैसे अनुप्रयोगों के लिए दिन और रात के दौरान इंफ्रारेड तस्वीरें भेजेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। 27 मार्च 2015 को उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना।
चाहे वो काव्य मंच हो या संसद का गोलघर, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने वक्तव्य से जन संबोधन में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वाजपेयी की देह सन 2018 में 93 वर्ष की आयु में बीत गई। जब सन 1999 में तमाम विपक्ष ने अपने अस्तित्व का जोर लगा दिया, तब वाजपेयी सरकार को मात्र एक वोट से हार का सामना करना पड़ा। मगर कहते हैं ना, मैं इस कदर हार जाऊंगा कि तुम जीत कर पछताओगे।
हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं, जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्र के उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे।
प्रगतिशील विचार वाले अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। देश के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना से लबरेज वाजपेयी कहते हैं,
उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए, क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
नई दिल्ली में सदैव अटल स्थित उनकी समाधि पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के पाटलिपुत्र पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी पटना के गांधी घाट और हाथीदह के साथ साथ भागलपुर और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं जिले के गंगपुर सिसवन में जलस्तर लाल निशान के पास बना हुआ है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर है। फिलहाल नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में 82 सेंटीमीटर, कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में 137 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से 105 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से 18 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर बेगूसराय जिले के बाढ़ प्रभावित 7 प्रखंडों में गंगा नदी के जलस्तर में कुछ कमी आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
बेगूसराय के बछवाड़ा, मटिहानी, तेघरा, बरौनी, बलिया, साहेबपुर कमाल के दियारा इलाकों में गंगा का रौद्र रूप शांत होने से राहत अभियान में तेजी आई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रभावित लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि सिविल सर्जन के नेतृत्व में प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूलों में 21 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
मुंगेर से हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार ने बताया है कि कुछ प्रखंडों में गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग महामारी को लेकर अलर्ट पर है।
जिले में गंगा के जलस्तर में प्रति 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर की कमी हो रही है। हालांकि सदर प्रखंड के 3 पंचायत जाफरनगर, कुतलुपुर और टीकारामपुर अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला आपदा पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने कहा कि घटते जलस्तर के बाद भी जिन पंचायतों में बाढ़ का पानी अभी नहीं निकला है वहाँ महामारी को रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के आवागमन के लिए प्रत्येक पंचायत में दो दो नाव की व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
सहरसा में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से चौकसी बढ़ा दी गई है।
कोसी नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण नवहट्टा प्रखंड के केदली गांव जाने वाली मुख्य सड़क का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, जिस कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर चानन पंचायत के चानन, सिसवा, बलदही सहित अन्य गांवों के आसपास उपजाऊ भूमि के कटाव का खतरा मंडराने लगा है। खासकर चानन पंचायत के चानन वार्ड नंबर 9 एवं 10 के समीप कोसी नदी का कटाव शुरू है। प्रशासन की तरफ से राहत कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सहरसा से आरती कुमारी।
70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए घोषित विजेताओं की सूची जारी की। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को मिला है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी, अमोल पालेकर, चंदन रॉय और शर्मिला टैगोर ने मुख्य भूमिका निभाई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में आईना ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। ऋषभ शेट्टी ने कन्नड़ फिल्म कांतारा में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। पूर्व विधायक अनंत सिंह को आज बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने पिछले दिनों अनंत सिंह को AK-47 राइफल और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के मामले में बरी कर दिया था। अनंत सिंह 2016 से जेल में बंद थे। बेगूसराय जिले के लखमीनिया में नहाने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबने से दो किशोर की मौत हो गई। इधर शिवहर जिले में अलग अलग स्थानों पर बागमती नदी में दो युवक डूब गए जिनकी तलाश जारी है। शेखपुरा जिले के जयमंगला गांव में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गई। अररिया के जोगबनी नगर परिषद में सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत नवनिर्मित बस स्टैंड का शुभारंभ सांसद प्रदीप कुमार सिंह और स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी ने संयुक्त रूप से किया। शिवहर जिले के मुजफ्फरपुर मुख्य पथ के पास वाहन जांच के दौरान तरियानी पुलिस ने तीन युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 20,000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। भारतीय चिकित्सा संघ ने कल देशभर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों और हरियाणा में 1 चरण में वोटिंग होगी। राज्य के विभिन्न भागों में भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। सहरसा मानसी रेलखंड पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए रेलवे ने निगरानी बढ़ाई। और कृतज्ञ राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।